તારીખ 21-8-1984, શ્રી પરમાગમ સાર, બોલ નંબર 663, 664 અને 665 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 387.
વિષય શું છે આ બોલ કાઉન્સમાં? આ વસ્તુ પ્રયોગમાં લાવવા માટે અંદર મૂળમાંથી પુરુષાર્થનો ઉપાડ આવવો જોઈએ કે હું આવો પદાર્થ વિચારમાં તો વસ્તુ આવી છે, હવે પ્રયોગમાં લાવવા માટે એમ છે, વિચારમાં સમજાયું છે કે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે, અનાદિ અનંત શાશ્વત મહાસત્તાધારી પદાર્થ છે, એમાં નિર્મળ જ્ઞાન અને નિર્મળ આનંદ એ આશ્ચર્યકારી ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, આશ્ચર્યકારી આત્મ સ્વભાવ છે એવું સમજાયું છે. હવે એનું આચરણ જે સમજાવ્યું છે એનું આચરણ થવા અર્થે એમ વાત છે, પ્રયોગમાં લાવવા માટે એટલે
આચરણ થવા,
એનું આચરણ થવા અર્થે શું કરવું જોઈએ, શું થવું જોઈએ એ વિષય છે. લોકો કહે છે કે માત્ર વાત કરે કે વિચાર કરે ન વળે, પણ કંઈક આચરણમાં આણવું જોઈએ.
બરાબર,
આચરણમાં ન આવે તો એક એવી વાત તો શુષ્ક જ્ઞાન જેવી લાગે છે, સામાન્ય બુદ્ધિવાનને પણ એમાં કસ લાગતો નથી. બાહ્ય દ્રષ્ટિ જીવો પણ સમજી શકે છે કે આ શુષ્ક જ્ઞાનની વાતમાં કાંઈ ધર્મ હોય કે ધર્મ થાય એવો વિશ્વાસ આવતો નથી, એવી પ્રતીત આવતી નથી. એટલું તો ઉઘાડવાળા, બહારના ઉઘાડવાળા પણ સમજી શકે છે, પણ ધર્મમાં તો ધર્માચરણ હોય જ, ધર્મ પ્રગટ થાય અને ધર્માચરણ વિના પ્રગટ થાય એ તો બની શકે એવું
નથી.
તો એ આચરણમાં આવે એટલે વિચારનો વિષય વસ્તુ, વિચારનો જે વિષય વસ્તુ છે એ આચરણમાં પરિણમનમાં આવે. વિચાર વિના આવે તો સંભવિત નથી, પણ વિચારમાં અટકે તો પણ નકામું છે. વિચાર તો યથાર્થ ત્યારે કે આચરણ અથવા પ્રયોગમાં ઉત્સુક થાય ત્યારે. જો એ વિચાર અમલમાં મૂકવાનો ન હોય, કોઈ પણ વિચાર જો અમલમાં મૂકવાનો ન હોય તો એ વિચાર વ્યર્થ છે. એ વિચાર વ્યર્થ છે, એનો કોઈ ઉપયોગ તો ન રહ્યો ને. એટલે ત્યાંથી આ વાત લીધી છે કે વિચારનો તબક્કો જેનો બરાબર છે, વિચારના સ્ટેજમાં જે ઠીક ઠીક રીતે યથાર્થ રીતે આવી ગયો છે, એને અંતર પ્રયોગ કેવી રીતે થાય આ વિશે લીધો છે. એ પ્રયોગમાં લાવવા માટે અંદર મૂળમાંથી પુરુષાર્થનો ઉપાડ આવવો જોઈએ. આટલા શબ્દો છે. પુરુષાર્થનો ઉપાડ આવવો જોઈએ, તે પણ ઉપર ઉપરથી નહીં પણ અંદરમાંથી મૂળમાંથી આવવો જોઈએ. એટલે પાછળના જે વચનો છે ને એ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે કે હું આવો મહાન પદાર્થ. જ્ઞાનમાં જે ભાષ્યમાન થયો છે મહાન પદાર્થ, એના આધારે, એના અવલંબને, એના લક્ષ્ય, જ્ઞાનમાં લક્ષ્યમાં એ પદાર્થને રાખીને જે પુરુષાર્થ ઉપડે, જે જોર આવે કે હું આવો એવું જે જોર આવે, પોતાની મહાનતાનું મહાનતાને અનુલક્ષીને જે પરિણામમાં બળ ઉત્પન્ન થાય, પરિણામમાં ઉગ્રતા આવે, એને પુરુષાર્થ કહે છે. એ અંતર તત્વ સ્વરૂપના પરમાત્મ તત્વ સ્વરૂપના લક્ષ્ય અને પરમાત્મ તત્વ સ્વરૂપના આલંબનના જોરમાં ઊભું થતું હોવાથી એને અંદરમાંથી આવ્યું ને મૂળમાંથી આવ્યું એમ કહેવાય છે. એ જે પુરુષાર્થનો ઉપાડ છે એ પ્રયોગની ભૂમિકા છે. પ્રયોગ અને પુરુષાર્થ એક જ પર્યાયવાચી બે શબ્દો છે. ખરેખર તો પ્રયોગ અને પુરુષાર્થ શબ્દો બે છે પણ એક જ પર્યાયના વાચક છે. ખરેખર તો કોઈ એમ કહે કે મારે પ્રયોગમાં આવવું છે, એનો અર્થ એ થયો કે એને પુરુષાર્થમાં આવવું છે.
બરાબર.
કોઈ એમ કહે કે મારે પુરુષાર્થમાં પ્રવેશ કરવો છે, પુરુષાર્થ ઉપાડવો છે, એનો અર્થ કે એ હવે પ્રયોગમાં આવે છે.
બરાબર.
એ પુરુષાર્થને પ્રયોગ કહો કે બીજી બાજુ એને આચરણ કહો, એ હવે ખરેખર જે સમજો છે એનું ચરણ કરે છે. માણસને કહેતા કે તમારું તમારી વાતનું ચરિતાર્થ પણ શું છે, અથવા વાત છે જે કંઈ વાત છે એ કામમાં શું આવે છે, અથવા એનો ઉપયોગ શું છે, શું કામની એ વાત છે, એને એમ ચરિતાર્થ પણ કહે છે. એ ચરિત થવું, આચરિત થવું, ચરિત થવું એમ કહો કે આચરિત થવું એમ કહો, એ અહીંથી શરૂ થાય છે. ત્યાં સુધી જે વિકલ્પ છે એ પુરુષાર્થ જેમાં નથી એવી જે વિકલ્પની સ્થિતિ છે, એ વિકલ્પની સ્થિતિમાં ભલે ઠીક પણ દેખાતું હોય કે વાત તો સમજાય છે, તેમાં અસત્ય પણ નથી, સત્ય સમજાય છે, પણ હજી એ વાતને જે મેળ ખાવો જોઈએ, આચરણનો મેળ ખાવો જોઈએ, એ મેળ નથી ખાતો ત્યાં સુધી એમાં વાસ્તવિકતા એ તો ઉણપ રહેલી છે. કોઈ ને કોઈ પ્રકારની ઉણપ રહેલી છે, અને એ ઉણપ છે એ ધર્મ પ્રાપ્ત થવા સંબંધિત ઉણપ છે. બિલકુલ
એના ઉપર ગુરુદેવ ના પ્રવચનો થયેલા એ ચિઠ્ઠીના પ્રવચનો માંથી આ બોલ છે 663, 664, 665 અને 666 ચાર બોલ એમાંથી છે. સંગીત દર્શન ની પર્યાય અનાદિથી ન હોય, મિથ્યા દર્શનાદિની પર્યાય અનાદિથી ન હોય, મિથ્યા દર્શનાદિની પર્યાય પ્રવાહ રૂપે અનાદિથી છે. કોઈ પણ એક પર્યાય પોતે સાદી શાંત હોવાથી તેની આદિ થાય છે અને તેનો અંત આવે છે. એવું પર્યાયનું ઉત્પાદ વ્યયાત્મક સ્વરૂપ હોવાથી કોઈ પર્યાય સદાય રહેતી નથી.
બરાબર.
પોતાના સ્વકાળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને સમય માત્રમાં વિલીન થાય છે. પછી તે પર્યાય સંગીત દર્શનની હોય કે પર્યાય મિથ્યા દર્શન આદિ, એટલે કોઈ પણ લેવા. સંગીત દર્શનની પર્યાય અનાદિથી ન હોય ને મિથ્યા દર્શન આદિ, એટલે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર, દુઃખ વગેરે કોઈ પણ પર્યાય અનાદિથી ન હોય. ક્યારે કોઈ પર્યાય અનાદિથી ન હોય. હા, મિથ્યા દર્શન અનાદિથી ચાલ્યું આવે છે એમ કહેવાય છે કે મિથ્યા દર્શન જીવને અનાદિથી છે અને મિથ્યા દર્શન તો પર્યાય છે, તો પણ તેની તે પર્યાય અનાદિથી ચાલુ નથી. પ્રત્યેક સમયે મિથ્યા દર્શનને પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ થાય છે અને નવી મિથ્યા દર્શનની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, એમ અનાદિથી પ્રવાહ રૂપે મિથ્યા દર્શન ચાલુ રહ્યું છે. તેની તે પર્યાય રૂપે મિથ્યા દર્શન ચાલુ રહ્યું નથી. જેમ પાણીનો પ્રવાહ છે, એમાં પાણી સળંગ દેખાય છે, છતાં વહેતું પાણી તેનું તે પાણી એક જગ્યાએ હોતું નથી. વહેતું ચાલ્યું જાય છે, બીજું આવે છે. નવા નવા પાણીના પરમાણુઓ સતત આવતા હોવાથી પ્રવાહ સળંગ દેખાય છે, પણ છતાં પ્રત્યેક પાણીના બિંદુ ટીપું એ ટીપું પાણી જુદે જુદું છે. એમાં એક છે પહેલા સમયે છે, એ બીજા સમયે નથી. એમ પ્રવાહ રૂપે મિથ્યા દર્શન અનાદિથી હોવા છતાં એ મિથ્યા દર્શનની પર્યાય તેની તે કોઈ અનાદિથી છે નહીં, હોઈ શકે નહીં. તેમાં પોતાના સ્વરૂપને ચૂકીને પરમાં રુચિ કરે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. રૂચિના લક્ષણથી મિથ્યા દ્રષ્ટિ પણ સમજવામાં આવે છે. મુખ્યપણે ઊંધી શ્રદ્ધામાં, ઊંધી શ્રદ્ધાને કારણે, મિથ્યાત્મને કારણે જીવને પરપદાર્થમાં રુચિ થાય છે. પરપદાર્થ એને રૂચે છે, કોઈને કોઈ પરપદાર્થ અને એ પદાર્થ સંબંધીનો રાગ એમાં એને રૂચવું થાય છે, ઈષ્ટ લાગે છે, આ મને ઠીક છે એમ પોતા રૂપપણે એને અનુભવ થાય છે. એ પોતાના સ્વરૂપને ચૂકીને પોતે જ્ઞાન સ્વભાવ છે, એકનું ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે, એકનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે આત્મતત્વ, એટલે માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, માત્ર જ્ઞાનમય છે. એવા પોતાના સ્વરૂપને ચૂકી પરમાં રુચિ કરે છે, પુણ્યમાં રુચિ કરે છે, પુણ્યના ફળમાં રુચિ કરે છે, પાપ ભાવમાં રુચિ કરે છે, તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તેને પોતાનો જ્ઞાયક સ્વભાવ, પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ, જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ ઉપાધિ નથી. તેને ફક્ત અન્ય ભાવ અને અન્ય ભાવમાં ના વિષયરૂપ જે જળ પદાર્થો છે, પરપદાર્થો છે, એ જ ઉપાધિ થાય છે. જે મિથ્યાત્વની દિશામાં પરને વિષય કરે છે અને સમ્યક્ત્વની દિશામાં સ્વને વિષય કરે છે. જીવનો ભાવ છે, મિથ્યાત્વની દિશામાં પણ એની હયાતી છે, વિપરીત રુચિ પડે, અને સમ્યક્ત્વની દિશામાં પણ એની હયાતી છે, અવિપરીત રુચિ પડે, સ્વરૂપની રુચિ પડે. કહ્યું ને અનુભવ પ્રકાશમાં કે કોઈ એમ કહે અથવા એમ માને, એમ વિચારે કે આ કાળમાં આત્માનો સ્વાનુભવ, નિર્વિકલ્પ અનુભવ કઠણ છે, તો તે સ્વરૂપની ચાહ મટાડનાર બહિરાત્મા છે, અથવા એ સ્વરૂપની અરુચિ બતાવનાર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. હજી તો કેટલાક સાધુ થયા પછી એને ખબર નથી કે આ કાળમાં સ્વાનુભવ ને અનુભૂતિ થાય કે ન થાય, એની ખબર નથી. એવા લોચા છે, દીક્ષા લીધી હોય, સાધુ નામ ધરાવતા હોય, સાધુનો વેશ હોય, અનેક પ્રકારના ગ્રંથોનો અધ્યયન કરતા હોય, નવરાશ્ર કઈક તો કરે, અનુભૂતિ આ કાળમાં થાય કે નહીં એની ખબર નથી. પોતાને તો નથી થઈ એટલે એ ખબર નથી, હવે બીજાને પણ પોતાને નથી થઈ માટે બીજાને પણ નહીં થતી હોય, માટે આ કાળમાં થાય કે નહીં એવો પ્રશ્ન શંકા ઉદભવે છે, અથવા એની ઊંચી દિશા અત્યારે બહુ કઠણ છે એવો જેને વિચાર વિકલ્પ આવે છે અથવા એવું સ્થાપે છે, તે સ્વરૂપને ચા મટાડનાર, સ્વરૂપની રુચિ મટાડનાર, ચા એટલે રુચિ, બહિરાત્મા છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એને સમ્યક્ત્વ છે કે નહીં એ વિચાર કરવાનો પ્રસંગ નથી, વિચાર કરવાની જરૂર નથી કે એને સમ્યક્ત્વ છે કે
નહીં.
એમના છે કે વાંચે તો ચોખ્ખો એમાંથી નીકળે કે અપ્રતિબુદ્ધને આ કહીએ છીએ, અપ્રતિબુદ્ધ એટલે અજ્ઞાની, બુદ્ધ નથી થયો, જ્ઞાની નથી થયો, બુજ્યો નથી, કોઈના દ્વારા પ્રતિબોધ પામ્યો નથી, એવો જે અપ્રતિબોધ છે એને કહેવામાં આવે છે, શાસ્ત્રમાં આવે છે. મુનિની વાત ક્યારે? વિધ્યાત્મ મટાડવું, અજ્ઞાન મટાડવું, વેદજ્ઞાન કરવું, સમ્યક પ્રાપ્ત કરવું, એ મુનિ દશામાં આવે કે એ પહેલા ચોથા ગુણ સ્થાને આવે? વિષય તો એ છે, આખા શાસ્ત્ર નો એ વિષય છે. સમયસર વાંચવાની લાયકાત કોને કહેવી? કોઈ લાયકાત નો પ્રશ્ન કાઢે તો એને પૂછીએ કે સમયસર વાંચવાની લાયકાત કોને ગણવી? ઊંધું તો ગમે ત્યાંથી અજ્ઞાની પકડશે, ક્રિયા કરશે તો ઊંધું પકડશે, શાસ્ત્ર વાંચે તો ઊંધું પકડશે, અને ઊંધું પકડીને જ બેઠો છે. થોડું ક્યાં થયું છે એનું? હવે તો ઊંધું કાઢવા માટેની આ દવા છે, જડીબુટ્ટી છે. આ તો દવા એટલે જડીબુટ્ટી છે, રામબાણ ઈલાજ છે. જે અજ્ઞાન માં હોય છતાં પણ શુદ્ધાત્મા ની વાત પ્રસન્ન ચિત્ત થી સાંભળવા માંગતો હોય, એ તો આવી ગયું. આવી ગયું ગઈકાલે 661 જે જીવ પ્રસન્ન ચિત્ત થી ઉલ્લાસ થી પોતાનું હિત કરવાની ભાવનાથી અને પોતાનું લક્ષ્ય કરીને, પોતા સામે જોઈને, કોઈની સામે જોઈને પુણ્ય પાપ રાગાદી નો ઉલ્લાસ છોડીને આ નાસ્તિ કરી દીધી, પોતાના સ્વરૂપને સાંભળવા માટે જે કૃષાતુર છે, આતુર છે, એ સમયસર વાંચવાને સાંભળવાને અધિકારી છે. આટલી લાયકાત જોઈએ. પહેલા આટલા વ્રત તપ સંયમ નિયમ કરે તો સમયસર વાંચવાને અધિકારી છે, એવી વાત લીધી નથી. ઝીણું તો કાંઈ એવું નથી, તો અભ્યાસ નથી એટલે ઝીણું ઝીણું લાગે છે, એવું ઝીણું કાંઈ નથી. દેડકાને આત્મજ્ઞાન થાય ને સમ્યક દર્શન થાય, ચકલાને થાય, માછલાને થાય, જંગલમાં શિકાર કરીને પેટ ભરતા હોય એવા સિંહ વાઘને થાય, સિંહ વાઘ ચિત્તા દીપડા અજગર હેરું એને થાય, એ તો બધા પાપી પ્રાણી છે. પાપના ફળમાં એ ભોવાયા છે અને વર્તમાનમાં પણ તીવ્ર કૃતાદિથી પાપ કરે એવા જેને પ્રકૃતિ છે. પૂર્વભવની તૈયારી તો ગમે એ પહેલા પણ એની હતી જ ને, જે ક્ષણે એને પુરુષાર્થ કર્યો એ પહેલા પણ પૂર્વભવની તૈયારી હતી જ ને એને, નહોતી એવું ક્યાં હતું? પણ જ્યારે પોતે જાગૃત થાય ત્યારે એને પૂર્વભવ સાથે જોડવામાં આવે છે. એ બધા સમ્યક દર્શન પામી શકે ને. અહીંયા એને કરવું નથી એટલે બહારનું કાઢે, પણ આપણી પાત્રતા ન હોય ને વાંચીએ તો કઈ મુશ્કેલી થશે સમયસર વાંચતા. પાત્રતા કોને કહેવી એ ખબર છે કે નહીં? એ બીજ જ્ઞાન નો વિષય છે. આ પદ્મનંદી આચાર્ય દેવે આ પરિભાષા કરી છે, એ પાત્ર છે એમ છે, સીધી વાત છે. તે ધન્ય છે, ધન્ય છે કહો કે પાત્ર છે એમ કહો. ભલે હજી અજ્ઞાન દશા છે પણ એની તૈયારી છે. ગુજરાતી નથી સમજાય, સમજાય નહીં સમજાય. હા, Thank you.
अपने स्वरूप के स्वरूप को भूलकर पर में रुचि करता है तो मिथ्या दृष्टि है, रुचि अपेक्षा से बात है। अपनी रुचि कहाँ काम करती है, स्वलक्ष्य करें, अपने परिणाम को देखे, अपना परिणाम की तलाश करे, अपना परिणाम की जांच करे और बहुत दरकार से करे, दरकार रख के करे, तो पता चलता है कि रुचि कहाँ काम करती है, रुचि किस विषय में जाती है, कौन सा विषय इष्ट लगता है, बहुत रुचता है, क्या भाता है क्या नहीं भाता है, वो खुद को तलाश करे और समझ में नहीं आवे ऐसा बनता
नहीं।
स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यात्व है या मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मैंने मिथ्या श्रद्धान, दर्शन मैंने दर्शन उपयोग नहीं, सम्यक दर्शन मैंने सम्यक श्रद्धान, मिथ्या दर्शन मैंने मिथ्या श्रद्धान। दर्शन शब्द का दो अर्थ है। कहते हैं कि स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान, यानि पर पदार्थ में अपनत्व होवे, ऐसा श्रद्धान होवे, यानि पर पदार्थ से मुझे सुख मिलता है ऐसी प्रतीति होवे, अन्य पदार्थ से, जड़ पदार्थ से, अनुकूलताओं में से मुझे सुख मिलता है, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसी मान्यता, उसको मिथ्या दर्शन और मिथ्यात्व कहने में आता है। इसका यही अर्थ हुआ कि स्व में सुख नहीं है, मैं सुख स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ और मुझे अन्य पदार्थों की अनुकूलताओं से सुख मिलता है। जिसमें सुख नहीं है ऐसे पदार्थों में से भी सुख मिलता है, ऐसी भ्रामक मान्यता हो जाती है, उसको मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व कहने में आता है। वहां भी तलाश करें कि क्या सही रूप में कोई जड़ पदार्थ में से सुख का प्रवाह निकलता है, सुख देखने में आता है, सुख देखा जाता है, सुख पाया जाता है, जहाँ सुख है ही नहीं ऐसे जड़ रचकण में से सुख मिलना ये संभवित नहीं है। सो मैंने चेतन, स्व माने चेतन, इसका ज्ञान दर्शन रूप यथार्थ है, इसका यथार्थ स्वरूप तो ज्ञान और दर्शन है, चैतन्य, ज्ञान दर्शन मैंने चैतन्य, एक चैतन्य स्वभाव को भेद से दो रूप में देखे तो ज्ञान और दर्शन ऐसा बेभेद होता है, और उसको ही अभेद में देखे तो एक चैतन्य, वो इसका यथार्थ रूप है। सो मैंने चेतन, उस चेतन का ज्ञान और दर्शन यथार्थ रूप है, सही रूप है, सच्चा रूप है, पुण्य और पाप रूप विकार है, जीव की दशा में पुण्य भाव पाप भाव दो प्रकार के विकारी भाव होते हैं, दोनों विकार है, पुण्य भाव पाप भाव दोनों विकार है, विकार है मैंने ज्ञान दर्शन नहीं है, पुण्य भाव ज्ञान नहीं है, पुण्य भाव दर्शन नहीं है, इसलिए पुण्य भाव पाप भाव चैतन्य नहीं है,
चैतन्य स्वभाव ही नहीं है, है जीव की अवस्था, इसलिए उनको जीव विकार चेतन विकार ऐसा कहने में आता है। ये जीव का रोग है, ज्ञान दर्शन उनका स्वभाव है और पुण्य पाप विभाव है, विभाव इसका रोग है। रोग भले ही जीव की अवस्था है लेकिन इष्ट
नहीं,
नहीं है, अनिष्ट है। नाम नागन नाम प्रिय श्रद्धान का नाम मिथ्या अक्सर टूटी गए नाम तो मज छाइप है। पहले सुधारी लीधे એટલે એમને મંચાઈ ગયું। પુણ્ય પાપ કા રૂપ વિકાર હૈ, આત્મા કા રૂપ જ્ઞાન દર્શન હૈ। આત્મા આદમી કા રૂપ દેખા જાતા હૈ, કૈસા હૈ આત્મા, કૈસા કા રૂપ દેખા જાતા હૈ, કૈસા હૈ आत्मा, कैसा है कि जिसका रूप ज्ञान दर्शन है। और पुण्य पाप कैसा है कि जिसका रूप विकार है, विकारी रूप है। आत्मा अविकार स्वरूप है और पुण्य पाप विकार स्वरूप है सदा ही। और रागादि भी उनमें नहीं होने पर भी जो ज्ञान है वो तो ज्ञान ही रहता है। ज्ञान पुण्य रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय रूप
नहीं होता,
ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान रूप ही रहता है। जैसा दर्पण है, कितने ही प्रतिबिंब इसमें झलके फिर भी दर्पण तो दर्पण है। ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं है कि जो ऐसा चौंट जाए और दर्पण हमेशा ऐसा ही प्रतिबिंब रूप रह जाए, ऐसा तो कभी बन सकता नहीं। इनका स्वभाव निर्लेप रहने का है, अविकार रहने का है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव अविकार रूप रहने का है। ये पुण्य पाप का बात लिया है, लेकिन हर्ष और शोक दो भाव भोगने में आता है। शोक भोगता है, दुख भोगता है। ज्ञान को देखे कि क्या हुआ, ज्ञान में कुछ मिल गया, कुछ पा लिया, कुछ आ गया, कुछ चला गया, दुख हुआ तो कुछ चला गया ज्ञान में से, तो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। अविकार रूप सर्वदा अविकार रूप रहने का इनका स्वरूप ही है, ये इनका स्वभाव है। यहाँ से स्वभाव का ग्रहण किया जाता है। नाम और राग भिन्न है, भिन्न ही रहता है। मिथ्या दृष्टि को भी एक हुआ नहीं है, एक पणे का अध्यास हुआ है। ज्ञान में आ गया, मेरे में दूसरा पदार्थ आया, मेरे में दूसरा पदार्थ की कुछ असर हो गई, कोई प्रभाव आ गया, ऐसा भ्रम होता है अज्ञान में, कभी होता
नहीं।
जड़ का रूप और उसका द्रव्य गुण पर्याय है ऐसे नहीं मानते, ऐसा नहीं मानकर राग को और जड़ को अपने स्वरूप मानना तो मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है। जड़ पदार्थ का स्वरूप इनका द्रव्य गुण पर्याय रूप है। एक रजकण जगत का स्वयं सिद्ध पार्टिकल कहते हैं, एक रजकण भी जगत का स्वयं सिद्ध पदार्थ है। वो पदार्थ में अपना गुण है कितने के अनंत, और अपनी स्वयं की अवस्था है, उसको ऐसा नहीं मानकर, इसका द्रवगुण पर्याय रूप उसको नहीं मानते और इस जड़ को अपने स्वरूप मानना, राग को भी अपना स्वरूप मानना, यही मिथ्यात्व है। इस शरीर मैं हूँ, शरीर का कार्य मैं करता हूँ, इसमें जड़ को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। शरीर तो प्रत्यक्ष रूप से जड़ ही है, मैंने खाया, खुराक से वो मेरे में आया, खुराक मेरे में प्रवेश करता है, इसलिए मुझे पुष्टि होती है और मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा। जड़ को अपने स्वरूप मानना ही मिथ्यात्व है। शरीर को कुछ होने से मेरे में कुछ हुआ, तंदुरुस्ती बढ़ी, वजन बढ़ गया तो मेरा बढ़ा, रोग हुआ, आयुष पूर्ण हुआ तो मेरा हुआ, मुझे रोग हुआ, मेरी मृत्यु होगी, ये सब जड़ के साथ अपनत्व है। सारी दुनिया में यही परिस्थिति है। विश्व में किसी भी प्राणी को लियो, देखो यही स्थिति है। शरीर को अपने रूप मानता है और विभिन्न प्रकार के जो रागादि विकार होते हैं, इतना ऐसा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। ये मिथ्या बुद्धि है, वो मिथ्या मान्यता है, मिथ्या आचरण है, ये अधर्म का स्वरूप है। चाहे धर्म के क्षेत्र में भी शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया, अपनी क्रिया समझे तो उसको धर्म होने के बजाय धर्म होने के उसको मिथ्यात्व का अधर्म हो जाता है। वो तो शुभ परिणाम करता है, शुभ भाव करता है, पुण्य करता है, भले ही पुण्य करता है लेकिन साथ ही मिथ्यात्व का धर्म को भी वो सेवन करता है, तो बड़ा पाप है। सभी उस पाप में मिथ्यात्व का पाप
बड़ा पाप है,
सबसे बड़ा पाप है। लोग छोटे छोटे पाप को तो मिटाना चाहता है, प्रयत्न करते हैं, छोड़ते भी हैं, लेकिन इतना बड़ा मिथ्यात्व का पाप जिससे अनंत जन्म मरण हो उसको तो मिटाता
नहीं,
और उसको मिटाने के प्रति इनका ध्यान भी कभी गया
नहीं।
बिचारी है, इस काल में अनुभूति होती है या नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस काल में धर्म होता है या नहीं होता है। अनुभूति बिना तो धर्म है
नहीं,
तो अनुभूति होती है कि नहीं होती है ऐसा कोई पूछे तो धर्म होता है कि नहीं होता है ऐसा बात हो गया। अभी कोई धर्मी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और पूछने वाले अपने को तो धर्मी में खताते हैं कि हम तो धर्मी हैं, और पूछते हैं कि धर्म होता है कि नहीं होता है। कितना बड़ा भारी अज्ञान है, ये ऐसी बात है। जड़ का रूप उसका द्रव्यगुण पर्याय है, जड़ का रूप कौन सा उसका द्रव्यगुण पर्याय उनका रूप है। आत्मा का चैतन्य निर्मय द्रव्यगुण पर्याय आत्मा का रूप है, और जड़ का द्रव्यगुण पर्याय उसमें जो है जिस प्रकार का वो उनका स्वरूप है। ऐसा नहीं मानकर राग को अपना स्वरूप मानना, जड़ को अपना स्वरूप मानना, सो मिथ्यात्व है। लोगों को मिथ्यात्व का के पाप का ख्याल आता है, दूसरी दूसरी हजार बातें कर लेता है। देखो कहते हैं कि समय सार पढ़ के कोई उल्टा समझ जाएगा तो, लेकिन ये क्रिया करके जड़ को अपना स्वरूप मान लेता है कि मैंने नहीं खाया, मैंने इसको त्याग कर दिया, मैंने इसको छोड़ा, ऐसी क्रिया मन वचन काया के संयम की मैंने की, ये मेरा कार्य है। उसमें मिथ्यात्व दृढ़ करने का उल्टा कार्य होता है, उसको क्यों नहीं देखते? उसको तो देखते
नहीं तो पाप चालू है।
मिथ्यात्व का बड़ा पाप को तो पुष्ट करें और ऐसी भ्रमणा में रहे कि ऐसे ऐसे कार्य किया हमने, वो धार्मिक क्रिया किया, धर्म का कार्य किया, हमने भी कुछ कल्याण किया, हमारा कल्याण के मार्ग में थोड़ा भी हम आगे बढ़ा। कहते हैं कि मिथ्यात्व में आगे बढ़ा है, धर्म में तो आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा गड़बड़ हो गया धर्म के क्षेत्र में, मिथ्यात्व रूप धर्म को दृढ़ करने क्या बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो गुरुदेव ने इस बात को प्रकाश किया, फड़कार किया, ठहर जाओ, ऐसा धर्म नहीं है, धर्म का स्वरूप कोई दूसरा है। ऐसे धर्म मानते मानते आगे बढ़ते हो, मिथ्यात्व में आगे बढ़ते हो, ऐसा तो धर्म है
नहीं।
सारे तमाम समस्त प्रकार के संप्रदाय की मिथ्या मान्यता के सामने बड़वा क्या कहते हैं,
क्रांति
बड़वा कर दिया है, आंदोलन कर दिया है, बड़ा आंदोलन किया, जबरदस्त आंदोलन किया, खड़बड़ी मची सारे संप्रदाय की समाज में, खड़बड़ी मची, ये क्या है।
अभी तो समझ में आता है गुरुदेव की बात सही है,
अच्छी बात है, समझ में आवे तो अंगीकार करना चाहिए। अगर ये बात सही है, ऐसा समझ में आवे तो स्वयं को अंगीकार करना चाहिए। ये खास बात रही गुरुदेव के प्रवचनों की, 45-45 साल तक एक ही विषय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के विषय में बहुत हजारों बातें कह करके बहुत प्रकाश किया, इस विषय को बहुत स्पष्ट किया। राग दुख रूप है, मलिन है और चैतन्य स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला है, शुचिपण विपरीतता ये आश्रो ना जानिने, बड़ी जानिने दुख कारण यथि निवर्तन देव करे। बहुत तिरगा था समय साहब, बहुत तिरगा था चैतन्य स्वभाव से इनका स्वरूप विपरीत है, स्वभाव ही विपरीत है, दुख रूप है और मलिन भाव रूप है, मलिनता है, भाव की मलिनता इसमें है। वो आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए और ऐसा ही आचरण करना चाहिए। 664 संकीति को पंच परमेष्ठी जिनवाणी जिन प्रतिमा जिन धर्म जिनालय ऐसे नौ देव को मानते हैं वो सुराग है। नौ देव को मानना ये निमित्त है सब। निमित्त के प्रति जो भी निमित्त का स्थान है उसी स्थान में उनका स्वीकार करना उसमें सुराग है। ये धर्म नहीं है लेकिन
सुराग
है। लेकिन ऐसा अपने अपने स्थान में मानने का होता है, क्योंकि कई लोग इसको उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पंच परमिष्टि को ही इष्ट माने, परम इष्ट उसको परमिष्टि कहा, परम इष्ट मैंने परमिष्टि कहा। ऐसे पवित्र दशा वाले पंच परमिष्टि सिवा अन्य कोई नहीं है। दूसरे देव नहीं है, दूसरे कोई ऐसे साधक भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है। पंच परमेष्टि में जो है वो सबसे इष्ट है। पवित्र दशा वाले हैं, विकराग दशा वाले हैं, निर्दोष दशा वाले हैं। इसको इसके अलावा दूसरे को माने नहीं। जिन वाणी को माने, मैंने पंच परमेष्टि की वाणी वो जिन वाणी है, सिद्ध परमात्मा की तो वाणी नहीं होती। अरविंद की वाणी वो जिनवाणी है और आचार उपाध्याय साधु की वाणी वो भी जिनवाणी है। सम्यक दृष्टि की वाणी वो भी जिनवाणी है। जिन प्रतिमा भगवान की स्थापना करने में आती है, जैसे निर्दोष परमात्मा जैन परमेश्वर है, वैसी इनकी स्थापना करने में आती है। इनकी प्रतिमा को कोई उठापे उड़ावे कि प्रतिमा प्रतिमा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा का निरालंबन ध्यान करना है ने, तो प्रतिमा रखोगे तो उनके प्रति ध्यान जाएगा, सुराग हो जाएगा। और अपना अंतर में आलंबन रखना है, ध्यान तो अंतर में रखने करने का है, बाहर में तो इसके किसी के प्रति ध्यान
नहीं
करना है। ऐसा अध्यात्म का ध्यान का आध्यात्मिक स्वरूप है, प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा विप्रयास कोई निकालते हैं उसको कहते हैं कि असल में साधक को भी थोड़ा बहुत राग रह जाता है, इसलिए तो साधक है, सिद्ध नहीं है। उस राग वाली अवस्था में उनको भगवान की प्रतिमा जो ध्यान का कारण है, निमित्त है, कारण मैंने निमित्त है कि जो स्वरूप ध्यान ऐसा होता है, शुक्ल ध्यान में विराजमान है अरिहंत परमात्मा, इसको तो ध्यान भी क्या कहना, उपयोग तो विचलित होता नहीं है। निरवशेष अंतर्मुख उपयोग की एकाग्र स्थिति सादी अनंत काल पर्यंत की जिसको रहेगी, उपयोग बनेगा लेकिन रहेगी, कोई पर्याय तो दूसरा समय रहती नहीं है, चाहे केवल ज्ञान की हो। वैसा आत्मा में अंतर्मुखी ध्यान होता है। ध्यान आत्मा का इस प्रकार का अंतर्मुखी ध्यान होता है, इसका संकेत, इसका स्वरूप जिन प्रतिमा समय से पाया जाता है, ऐसा देखकर जिन प्रतिमा की स्थापना व्यवहार जिन मार्ग में तीनों काल है, तीनों काल है। कितने तो विश्व में अकृत्रिम चैत्यालय है, गिनाली है, अकृत्रिम है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया हुआ नहीं, अनादि अनंत अकृत्रिम प्रतिमा है, और देवलोक वगैरह में है।
तो
राग से क्या प्राप्त, कैसा प्राप्त होता है? कोई दूसरी चीज आत्मा ले सकता नहीं, दे सकता नहीं, आत्मा को कोई चीज मिल सकते
नहीं।
आत्मा में आती है कोई चीज नहीं आती है। जैसे कोई चीज भूल गई, खो गई, क्या राग किया था? क्या था? कोई राग किया था?
नहीं।
छोड़ने का राग किया था? नहीं किया। राग नहीं किया फिर क्यों ऐसा हो गया? क्या कहना है कि अगर राग किए बिना भी चीज छूट सकती है तो राग किए बिना भी जैसे वियोग हो सकता है वैसे ही संयोग हो सकता है। एक जीव राजमहल में जन्म हुआ, एक जीव का राजकुमार हो गया, क्या राग किया उसने? उसको कोई प्रयत्न था, कोई राग था? उनको हजारें चीज मिलती है, खिलौने मिलते हैं सोने के, राग किया कोई सोने का खिलौना का राग किया था
उसने?
राग से ही चीज मिलती है, संयोग राग के बिना नहीं मिल सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अभी हीन पुण्य वाले जीव इधर है, सब पापानुबंधी पुण्य वाले हैं, पाप करते हैं और पुण्य को भोगते हैं, इसलिए ऐसे एक मान्यता होगी कि राग के बिना कुछ मिलेगा नहीं, राग के बिना कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे आगे के चौथे आर्य वगैरह में तो ऐसा था, ये धनाशाली भद्र का आता है कि नहीं आता है उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे पर भी कोई राजा है क्या। ये तो 2500 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, सैनिक राजा के काल में थे वो, 2500 साल हुआ ना, भगवान महावीर जिस काल में थे उस काल में सैनिक राजा थे हैं, तो उनको तो पता ही नहीं था। वो पैसा कमाने के लिए कौन सा राग करता था क्या है? पुण्य का आया था, पूर्व कर्म का ये खेल था, सब प्रकार के संयोग थे उनके। जिस चीज राजा ने नहीं खरीदनी चाहिए कि भाई अपनी कैपेसिटी नहीं है, इतना रत्न कामल है, इतनी महंगी चीज अपन कैसे खरीदे, रख लो, तुम बेचने को आया है तो वापिस मत जाओ, रख लो, स्नान करने में काम आ जाएगी। उस काल में ऐसा नहीं था कि वही कपड़ा उसी दिन पहरे, आज पहना और स्नान करने के बाद ले गया नौकर चाकर, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा है, ऐसा होता था। इस प्रकार के पुण्य थे, साबुन लगाया, साफ किया, धोया, फिर उसको सुखाया और फिर कल पहना, इस्त्री करके, आयरनिंग करके, वो बात नहीं थी उन दिनों में। आज पहना वो कल नहीं पहना, दे दिया, ले जाता है इनके साथ, ऐसा पुण्य लेके आए थे। तो राग बात करते हैं तो आता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो पुण्य भी देखा नहीं लोगों ने इतने, और वृत्ति इतनी दीन हो गई, भिक्षुक वृत्ति हो गई, दीन वृत्ति हो गई। तो भिक्षुक वृत्ति में भी उसको लगता है कि मैं कुछ हूं, उसको उसने तो पुण्य ही नहीं देखा। तो पुण्य जिसके पास धूल है, पुण्य जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसी वितरागता तो देखी क्या है, पुण्य नहीं देखा, उनके फल नहीं देखा अभी, बहुत दिनता दिन है, छोटी मोटी बात में दिनता दिनता रहती है। शुभ राग हो उतना, जैसा शुभ राग हो ऐसा पुण्य कर्म का बंधन होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि उसके पर
नहीं है,
उसकी कोई कीमत उसको नहीं है। मोक्ष मार्ग में जैसे पुण्य होते हैं ऐसे पुण्य भाव बंद मार्ग में मिथ्या दृष्टि को कभी होते नहीं है। ये साथी सही पुण्य है। मोक्ष मार्ग जीव को साथी सही पुण्य होते हैं, ऐसे पुण्य तो मिथ्या दृष्टि को होते नहीं। फिर भी धर्मी की दृष्टि पुण्य पर नहीं है, ये अन्य तत्व है, मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे इससे लाभ नहीं है, मुझे इससे सुख नहीं है।
प्रतिमा से आगे आके क्या विचार करना चाहिए?
स्वरूप ध्यान का विचार करना, अपने स्वरूप का ध्यान में अपना स्वरूप लेना चाहिए कि ऐसा स्वरूप में जो स्थिर है ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव है। दर्शन तो आत्मा का करने का है, जिन सोई ये आत्मा अन्य हो सो कर्म। आत्मा ही जिन स्वरूप है, जिन प्रतिमा है अंदर में आत्मा,
जिन प्रतिमा
स्वयं जिन प्रतिमा है, बस ये जिन प्रतिमा सिद्धि अरूपी नहीं दिखे तो ये जिन प्रतिमा को रख दी सामने के देख ऐसा है तेरा स्वरूप, इतनी बात है। बहुत अलौकिक प्रकार है,
बात है।
अभी तो दिन ऐसा हो गया है कि भगवान के सामने खड़ा रह के मांगता है कोई तकलीफ न हो, दुकान में व्यापार ज्यादा होवे और परिवार में सब अच्छे रहे और मुझे कोई प्रकार की प्रतिकूलता न हो, सभी प्रकार की अनुकूलता मुझे मिलो। ये मांगने को भी उसे नहीं आता है, मांगने का भी आता नहीं। भगवान नहीं देते, लेकिन ऐसा भगवान का दर्शन करे तो पुण्य बंधन है, पुण्य भाव हो और पुण्य भाव के फल में सब प्रकार की अनुकूलता मिले। ऐसा भिखारी होके भीख मांगता है, जो वितराग है उसके निमित्त से वितरागता का भावना, वितरागता की भावना होनी चाहिए, बजाय इसके जड़ पदार्थ में सुख नहीं है फिर भी सुखाभास के कारण जड़ पदार्थ की भावना भावे, बहुत नुकसान की बात है। ये बहुत नुकसान की बात है, तो अन्य मत जैसी बात होगी, जैसे अन्य मत में कोई मांगते हैं ईश्वर के पास भगवान के पास ऐसा मांगो ऐसा मांगो, यही बात होगी। जैसे अपने इधर स्थापना है विकृत कर दिया है, जिन भगवान ध्यानस्थ रूप में है, ध्यान के काल में सहज रूप से चक्षु दृष्टि, इसको चक्षु दर्शन कहते हैं, और चक्षु की दृष्टि जो है वो नासिकाग्र हो जाती है, ध्यान में जो नेत्र है वो ढले हुए रहते हैं, ऐसे खुले नहीं रहते हैं, जिसको चंचलता है परिणाम में, और जिसका दर्शन उपयोग भी चंचल है वो ही ऐसे ऐसे देखते हैं। आँख खोल के देखना ये चंचलता को सूचित करता है, ध्यान को सूचित नहीं करता। ध्यान का स्वरूप जिन्होंने जाना नहीं उन्होंने ये देखा कि अगर आँख खुली नहीं देखी जाएगी तो जैसे कोई अंधे हैं ऐसे देखे जाएंगे। इनका जो रूप है वो अच्छा है भगवान का, तो पुण्यशाली होते तीर्थंकर, तो तीर्थंकर प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, तो इनके आँख खुली होगी तो रूप अच्छा दिखेगा, इसलिए आँख उसको लगा दो, अच्छी से अच्छी लगाओ, ऐसे कीमती आँख लगा दे रहे। ये बात उनके स्वरूप के साथ मेल खाती
नहीं है। बराबर।
जाने का जरूरत क्या? जब विकराग मूर्ति प्रतिमा का संयोग मिल सकता है तो दूसरी जगह जाने का क्या आवश्यकता क्या है? अपने को खुद को पहले पूछ ले कि क्यों वहां जाना, क्या कारण है जाने का। मैं इस स्कूल में आया इसलिए, इस समाज में आया इसलिए, कोई समाज का लज्जा है, कोई समाज का भय है, कोई समाज का मान कीर्ति आबरू का कोई सवाल है, कोई स्थान रखना है, कुछ करना है, क्या करना है, हैं? ये सोच लेना और फिर सही काम करना, गलत काम नहीं करना, ये बात है। क्योंकि वहां से तो भाव आने वाला नहीं है। अगर श्रृंगारिक प्रतिमा दिखी तो कौन सा वितरकता का भाव आएगा? ये तो रात के तो निमित्त है। जिस अलंकार में सोना रत्न आदि लगाए हुए हैं वो रात के निमित्त है, कोई वितरकता के निमित्त
नहीं है।
नहीं है, वितरकता के कारण जाते हो तो वितरकता का निमित्त कैसे बनेगा? पर कुछ राग के कारण जाते हो तो वो तो अनादि से किया है, इसमें कोई धर्म होने का सवाल
नहीं।
धर्म का निमित्त भी नहीं बनेगा, धर्म तो कैसे बनेगा, लेकिन धर्म का निमित्त भी नहीं बन सकता, ऐसी बात है। जिसको निमित्त का पता नहीं है उसको उपादान का पता होवे ये बात बन नहीं सकती। निमित्त का ठिकाना नहीं जिसका, उसका उपादान का क्या ठिकाना? उपादान का कोई ठिकाना
नहीं।
फूल हो गया, गाड़ी दूसरी पटरी पे चढ़ गई, और फिर भी जाएगा तो ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होगा।